आगे है जी पारा नंबर 19। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। DQ 2023 दौरे कुरान 2023। इसमें से आज हम पारा नंबर 19 वक़ालल लज़ीना को करेंगे। इस बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत कुछ रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस बारे में शुरू में सूरत फुरकान का बाकी हिस्सा है, फिर सूरत शोरा, नमल और इसी तरह से बीच में कुछ चीज़ें हैं। इस साल हम अज़मत सहाबा के मौजू पे जिस चीज़ को इसमें थीम लेंगे वो क्या है कि सहाबा की अज़मत इसलिए थी कि उन्होंने जिहादन कबीरा पे अमल किया था। कुरान को पढ़ने का खूबसूरत तरीका हम इसी बारे में अभी थोड़ी ही देर में सूरत फुरकान की आयत 52 देखेंगे कि जिसमें कहा गया कि वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा। और सूरत फुरकान मक्की सूरत है और हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि जिहाद की इजाज़त मदीना में आने के बाद मिली, तो मक्की सूरत में जिहाद का लफ्ज़ जिहाद कबीर की सूरत में, इस पे मुफस्सरीन का इत्तफाक है कि यहाँ जिहाद बिल कुरान, कुरान को फैला दो। कैसे? नंबर एक, कुरान को मजबूती से थाम लिया। जिहाद बिल कलम क्या है कि कुरान को थामा और साथ कलम थाम लिया, कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान पाक के अहकामात पर अमल किया। सहाबा किराम ने कुरान की तशरीह की, सुन्नत और अहादीस को जमा किया। किताबत कुरान में सहाबा किराम की खिदमात पढ़नी हो तो आप ज़रा सा दौरे उस्मानी तो पढ़िए। सहाबा किराम के पास तकरीबन 20 से ज़ायद कुरानी सहीफ़े थे, यानी उन्होंने जो कुरान पाक की खिदमत की वो देखने के काबिल थी। आप देखिएगा कि सूरत फुरकान, शोरा और नमल, ये सूरतें आपको तरतीब से मिल रही हैं ना। इसमें अभी एंड पे हम इबादुर्रहमान की सिफात पढ़ेंगे जिसमें हमें इनका कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक दिखेगा। आप और मैं भी इस कुरान के सफ़र में कोशिश कर रहे हैं कि हम रहमान के बंदे बन जाएं और हमारा कुरान से ये ताल्लुक़ सिर्फ थोड़े दिन का ना हो बल्कि हमेशा का बन जाए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सहाबा के अकायद, इबादात, मामलात, अखलाकियात, दुआएँ सब कुरान के मुताबिक थी। हमने तो पता नहीं कौन कौन से वर्जन बना के रखे हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सहाबा की मदद करते थे। आज हम इस सहाबी का जिक्र करेंगे, उसमें आप इनका नाम सुनेंगे। फिर इसमें चूँकि सूरत शोरा है तो सूरत शोरा में शायरी की बात है। सहाबा किराम की कुछ शायरी भी हम देखेंगे इस्लाम की हिफाजत में, यानी कह लीजिए कि नबी और इस्लाम के दिफा में जो शेर व शायरी की। फिर जिहाद बिल कलम कैसे किया कि दूसरे मुल्कों में ख़त भेजे, कुरान को जमा किया। सहाबा किराम के सहीफ़े भी होते थे छोटे छोटे, और इस बारे में अगर आप देखें तो दो शख्सियात हम साथ साथ देखेंगे इस बारे की, एक है हसन बिन साबित और दूसरे हैं जैद बिन साबित। जैद बिन साबित का मामला क्या था वो तो बाद में देखते हैं। हसन बिन साबित कौन थे? जलीलुल क़दर सहाबी थे, शायर थे, नबी की मदह बयान करते थे, यानी नात लिखते थे आप कह लें। कुफार को अपनी शायरी के ज़रिए से जवाब देते थे। अगर आप समझना चाहें ना तो मिल्ली नगमों में क्या होता है कि अपनी फ़ौज का मुरैल बुलंद करो और दुश्मन को दबाओ, ये काम हज़रत हसन करते थे जंगों में, यानी मुसलमान फ़ौजियों को, सिपाहियों को प्रवोक करते और कुफार को डाउन करते। दीन इस्लाम का दिफा खूबसूरत अल्फाज से करते, गज़वात में भी शिरकत की और अल्लाह के नबी ने इनको एक दुआ दी थी, हत्ता कि रूहुल कुदस यानी फरिश्ते के ज़रिए से आपकी मदद की भी बात आती है। अगर आप इनकी ज़िंदगी पे एक हल्की सी उछटती सी निगाह डाल लें तो हज़रत हसन बिन साबित के जो फ़ज़ाइल हैं वो कह के ये वो वाहिद हैं सहाबी जिनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा था कि व जिब्राइल उमाक, ए हसन काफ़रों की हज़्फ़ करते रहो क्योंकि जिब्राइल आपके साथ हैं। ये सही मुस्लिम की अल्फाज हैं 6387। अपने लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी ताईद भी जिब्राइल के ज़रिए कर। फिर अल्लाह के नबी ने एक मौके पे इनको कहा था कि हसन इनको जवाब दो क्योंकि रूहुल कुदस भी आपके साथ हैं। आपने इनको बाकायदा इजाज़त दी थी कि आप जंगों में या बग़ैर जंगों के जब भी कोई दुश्मन इस्लाम या नबी सल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो आपने उनको जवाब दे देना है, और साथ ही आपने कहा था कि बात ऐसी ना करना कि जिसमें कोई शर्क हो या गलत तरीका हो। इन्होंने कहा कि अभी फिक्र ना करें, आपको तो मैं ऐसे निकाल लूँगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। तो बहरहाल हज़रत हसन के बारे में हज़रत आयशा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने जब देखा कि ये बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि जब तक अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से मुदाफियत करता रहेगा, रूहुल कुदुस बराबर तेरी नुसरत और तायद करते रहेंगे। यानी इनको ख़ास तौर पे फरिश्तों की माइयत हासिल थी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हसन ने कुफार की हज बयान की। हज समझ गया ना कि जो आपके साथ बुरा करे आप उसका जवाब बुराई से दे दें। फरमाया मुसलमानों को शिफा यानी खुशी दी और कुफार को बीमार कर दिया, यानी कि आपकी बातें सुनकर कुफार बीमार हो गए और इसी तरह से फिर आप उनको प्रवोक करते रहे, हत्ता कि यहाँ तक भी बातें हुई कि तुम पे मेरी माँ और बाप कुर्बान हों। ये कहा करते थे कि मेरी इज्जत मोहम्मद सल्लम को तुमसे बचाने के लिए सदका और कुर्बान है। यानी ये हर मौके पे दुश्मनों के खड़े हो जाते थे सामने। कुछ लोग तलवारें चला रहे होते थे, ये जुबान चला रहे होते थे। ये लोगों को इस तरह से प्रवोक करते थे कि देखो अगर तुम सामने आए ना तो तुम्हारी फिर बीवियाँ बेवा हो जाएंगी, तुम्हारी बहनें रोएंगी। तो बहरहाल ये है कि मुख्तलिफ लोगों से अल्लाह मुख्तलिफ काम लेता। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं अच्छा लिखिए, अच्छा बोल सकते हैं अच्छा बोलिए, अच्छा कर सकते हैं अच्छा कीजिए। इस्लाम का दिफा हर तरफ से जो भी करेगा हर लिहाज से अल्लाह उसको फ़ायदा देगा। आप में टेक्निकल स्किल्स हैं आप वो यूज़ कीजिए और सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हज़रत हसन के बारे में जब ये बातें पढ़ते हैं तो इससे ये पता नहीं चलता कि इल्म लेने के बाद आपको अपने स्किल्स और अपने टैलेंट का भी पता चलता है। कुछ लोग हैं वो पहले गाने बड़े अच्छे गाते थे, आप कुरान की आयतें बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, कभी नज़में बहुत अच्छी सुनाते हैं, कोई लोग नाते बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। तो अपना छुपा हुआ टैलेंट जाहिर कीजिए। इस बारे की दुआ अगर हम ले लें सूरत शोरा में आयत 84, 86, 83, रब्बी हबली हुक्मम वल हिकनी बिस्सालिहीन, असल में इब्राहिम की दुआ है अलैहिस्सलाम। क्या मेरे रब मुझे हुक्म अता फरमा, मुझको सालिहीन के साथ मिला और बाद में आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता फरमा और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा। आइए ज़रा पढ़ते हैं सूरत फुरकान के स्टार्ट से आयत नंबर 21 से, ये बारे में शुरू हो रही है 21 से 77, 21 to 77 सूरत फुरकान। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। आयत 21 से 34 रुकू नंबर 1 है, टॉपिक है बेहसियत आमाल। ज़रा से इसको पढ़ते वक्त दिल में दर्द भी महसूस कीजिएगा। वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ रखा है। ये था नुक्ता। जो खुद बड़ा होगा उसको दूसरा कैसे बड़ा लगेगा, जो खुद को अच्छा समझेगा उसको दूसरा अच्छा कैसे लगेगा, जो खुद को खूबसूरत समझे उसको कोई दूसरा खूबसूरत नहीं लगेगा। तो चूंकि अंदर बड़ाई थी इसीलिए ऐसा कहते थे। और सख्त सरकशी कर ली, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे खुदा करे तुम रोक लिए और बंद कर दिए जो। और उन्होंने जो जो आमाल किए थे हमने इनकी तरफ बढ़ कर इन्हें परगंदा जर्रों की तरह कर दिया, डस्ट पार्टिकल्स। रोशनदान से जब धूप आती है ना तो उसमें छोटे छोटे वो जर्द रंग के जर्रात हैं। क़यामत के दिन कुफार की नेकियों को अल्लाह इस तरह राख बना देगा। अलबत्ता उस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, और उस वक्त सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा, और ये दिन कुफार पर बहुत भारी होगा। और इस दिन जालिम अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा हाय काश के मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती, हाय अफसोस काश के मैंने फलां का दोस्त न बनाया होता, इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और रसूल कहेगा ऐ मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। सच छोड़ा वह? कभी देखा तो करे तरावियों में कितने लोग होते हैं, कुरान खानियों में कितने होते हैं, कितने कुरान छपते हैं, कितने पढ़ते हैं फ्री, लेकिन नबी तो कुछ और कह रहे हैं। खैर आगे देखिए। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बास गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है। और कुफ्फार ने कहा, इस पर कुरान सारे का सारा एक साथ ही क्यों ना उतार दिया गया। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपका दिल कवी रखें। हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़ सुनाया है। या आपके पास कोई मिसाल लाएंगे, हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा दलील आपको बता देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। अल्लाह अकबर। शाने नज़ुल लीजिए आयत 27:8 की। इबन जरीर में इबन अब्बास की रिवायत है, उबई बिन खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करता था, तो इसको उकबा बिन अबी मुईत डांटता था, यानी दोस्त डांटती थी कि तुम किधर जाती हो, बेकार वक्त ज़ाया कर रही हो। हाँ, उस पर यह आयत नाजिल हुई थी, यानी जिस रोज़ ये काफिर हसरत में अपने हाथ चबा लेगा कि काश मैंने अपनी दोस्त या अपने दोस्त की बात न मानी होती। आज भी जब आप कुरान की तरफ आते हैं ना, तो बहुत सारी दोस्तें थ्रेट फील करती हैं। वो कहती है अभी हम पे तनकीद करेगी, अब रोज़ हमें यही बातें कहेगी, फिर रोज़ हमें मैसेज भेजेगी, फिर कहेगी ये करो वो करो, इसको ही खींच लो। वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, एक हमाम में सब एक ही जैसे हो तो अच्छे लगते हैं। इसको भी महसूस कीजिएगा, और ये एक बड़ा हिडन वार होता है, और हम बड़ी जल्दी अपनी दोस्तों की बातों में आते हैं, कोई फ़ैसला करने लगे हैं ख़ास तौर पर कुरान से मुतल्लिक़। कभी अपनी उन दोस्तों से ना कीजिएगा जो ख़ुद कुरान नहीं पढ़ती। आपने सबीलुल जन्नत करना है, जाइए फ़ोन नंबर्स ले लीजिए, 10 से 15 लोगों से बात कर लें, शर्त यह है कि उन्होंने ये कोर्स किया हो। जिन्होंने किया वो बताएंगे ना ये कैसा है, जिसने इस्तेमाल किया ये सरफ उसको बताना ये सरफ अच्छा है कि बुरा है। तो जिसने कभी वो सरफ लिया ही नहीं तो वो तो क्या कह देगा, वो सबको पता है। हम अमूमन अच्छे कामों के मशवरे उन लोगों से करते हैं जो ख़ुद भी ये काम नहीं कर रहे होते। फिर इसके बाद 26 आयत के बारे में एक रिवायत है सही मुस्लिम में 1946। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमानों को लपेट लेगा और इनको दाएं हाथ में ले लेगा, फिर फरमाएगा मैं बादशाह हूँ। ऐनल मुलूक, किधर है बादशाह, लिवनिल मुल्कुल जाऊँ, किसकी ये बादशाहत, कहाँ है जोर वाले यानी वो जो बड़ा रोब डालते थे दुनिया पे, कहाँ है गरूर वाले। फिर बाएं हाथ से ज़मीन को लपेट लेगा जो दाएं हाथ के मिसल है। और इसी वास्ते दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं हैं, फिर फरमाएगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। कहाँ है जोर वाले, कहाँ है बड़ाई वाले, है ही कोई नहीं, खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस। और रिवायत से पता चलता है फिर अल्लाह खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। हमारे लिए अमल के नुक्ते क्या हैं, अल्लाह के नबी की पैरवी करनी है, अपनी दोस्ती और सोहबत नेक लोगों से रखनी है, अपने बच्चों के दोस्तों पर भी नज़र रखनी है, और शैतान के बहकावे से बचना है। फिर आयत 30 में जो कुरान का छोड़ना वो क्या था, अल्लाह के नबी की उम्मत कुरान को कैसे छोड़ती है। नंबर एक, कुरान की तरफ माइल नहीं होती, फिर इसे समझने की कोशिश नहीं करती, इससे एराज करती है, और इसके सुनने में खलल डालते हैं, और कुरान पाक पर अमल नहीं करते। सहाबा कराम और कुरान क्या था, हर पल कुरान को सुनने के लिए तैयार रहते थे, बल्कि इसके नज़ूल के इंतज़ार में रहते। कुरान पाक में जैसे ही कोई हुक्म आता फौरन इस पर अमल करते। जब तक एक एक आयत को अच्छी तरह समझ ना लेते अगली आयत पे ना जाते, कुरान के आगे अपनी अक्ल ना लड़ाते। इसीलिए थे वो रदी अल्लाह अन्हु व रदुवन। आपने मैंने क्या करना है, अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखना है, नेक आमाल की हिफाजत करनी है, नेक सोहबत इख्तियार करनी है, नसीहत को दिल से सुनना है, कुरान को मजबूती से थामना है, कुरान पाक में बेजा इतराजात नहीं करने। और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आज का बहुत बड़ा फितना, इस किताब को मशकूक बना दो, इसकी बातें ऐसे पेश करो कि गोया के ये तो कोई ओल्ड डेटेड पुरानी किताब है। आज हमारी नस्लों का इस किताब के साथ वो ताल्लुक नहीं दिखता जिससे पहले दिखता था। और आप देखिए, जब आप कुरान समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो अमल कैसे करेंगे। और फिर इसमें एक और छोटी सी बात भी नोट कीजिएगा कि इस किताब को जब तक समझ कर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको अपनी नहीं लगेगी। चूँकि इस किताब में हक़ की बात होती है और हक़ के ख़िलाफ़ लोगों को ये किताब अपनी ख्वाहिशात के रास्ते की रुकावट लगती है, इसीलिए अल्लाह ने ये रखा। और एक कमेंट दे दूँ, हम तो सिफारिश की उम्मीद लगा कर जाग के बैठे हैं वहाँ, और शिकायतें लग रही हैं। तो अमल के नुक्ते आपके मेरे लिए जो हैं, इस पे अमल करते हैं और आगे चलेंगे। रुकू नंबर 2, 35 से 44, निशाने इबरत बनने से बचना है। वलक़द आतैना मूसा अल-किताब, और बिलाशुबा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को छुटला रहे हैं। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया, और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इनको गर्क कर दिया, और लोगों के लिए इन्हें निशाने इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है, और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। कौन सी बस्ती? सदूम की वादी, सदूम कौमे लूत। पत्थरों की बारिश हुई थी इन पे, स्टोनिंग। क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं? हकीकत यह है कि इन्हें मर कर जी उठने की उम्मीद ही नहीं, और तुम्हें जब भी कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरा बन करने लगते हैं। तसव्वुर में लाइए, अल्लाह के नबी मदीने की गलियां या मक्के के बाजारों से गुजरे और लोग मुंह पे हाथ रख रहे, विस्लिंग कर रहे, आंखों से इशारे कर रहे। जरा सभी बंदे को कोई ऐसी नजरों से देखिए, एक सेकंड में पता चलता है। देखिए, नजरों में एक तासीर है, कोई किस तरह देखता है आपको। आप कुछ लोगों की नजरों से हमें ऐसे मिसफिट फील करते हैं, आपका दिल करता है वो मुझे ना देखे, आंखें खोल खोल कर देखेंगे। अल्लाह के नबी के साथ सारे हथियार इन्होंने किए इस्तेमाल, आगे हम पढ़ेंगे सूरह कलम में कि इनका तो दिल चाह रहा है अपनी आंखों से आपको फिसला दें। क्या दिल पे गुजरती होगी कि मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? लेकिन ये बातें तो सुननी पड़ती है। क्या कहते थे? क्या ये वही शख्स है जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा? वो तो कहिए कि हम इसी पर जमे रहे, वरना इन्होंने तो हमें अपने माबूदों से बहका देने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये टोन होती है आज भी, यानी स्टबननेस को अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं माने। कितना इन्होंने कहा लेकिन हमने भी कोई नहीं साइन अप किया, कितना इन्होंने बुलाया कि दिन न रखे कदम हमने। वैसे ही बंदा आ जाता है, तजस्सुस के मारे आ जाता है, कभी मुरव्वत के मारे आ जाता है। हम दोस्तों के कहने पे बाजारों में निकल जाते हैं, कभी इधर जाते, दिल भी नहीं कर रहा होता लेकिन नो नहीं कह सकते। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है कि शैतान रास्ते में ऑब्स्टिकल बन जाता है। करे शुक्र है हम नहीं इसकी बातों में आए। अल्लाह कहते सुन ले क्या, और जब ये अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था, और क्या आपने उसे भी देखा है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए। ये है वो आयत जिस पे गौर करना है। अफराई तमन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, अल्लाह को इलाह नहीं, रब को नहीं, खुद को इलाह बनाता है, खुद अपना खुदा बना बैठा है, ख्वाहिश परस्त। क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं सुन रहे, वो तो निरे चौपाए जैसे हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके हुए। ये है जी हदीस आयत 43 के साथ, अबू मामा से है। आपने फरमाया कि इस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद पूजे जाते हैं, इनमें अल्लाह के नज़दीक बदतरीन माबूद वो ख्वाहिश नफ्स है जिसकी पैरवी की जा रही हो। तबरानी की रिवायत है। आइए ज़रा अपना मुहासबा करते हैं, क्या कहीं मेरा माबूद मेरा नफ्स या मेरी मर्जी तो नहीं? क्या मैंने अपनी औलाद को अपना माबूद तो नहीं बनाया हुआ? और माबूद कौन है जिसको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर दे? क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ घर और घर के अंदर मज़ीद चीज़ों को लाना तो नहीं है? क्या कभी अपने मकसद हयात की वजह जानने की कोशिश की? अमल के नुक्ते लेते हैं, नेकी के कामों में मददगार बनना है। क्या बनना है हमने? अंसारुल्लाह। ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद नहीं बनाना, अल्लाह की दी हुई मिसालों से इबरत लेनी है, दोबारा ज़िंदा किए जाने पर ईमान रखना है, दाइये दीन का मजाक नहीं उड़ाना, फरसुदा रिवायात को छोड़ देना है। फिरौन ने एक दफ़ा कहा होगा शायद, अना रब्बुकुमुल आला, लिखिए जुमला, अना मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब हूँ, आला ग्रेट, और हमारा नफ्स, ये जुमला हमें शायद दिन में कई बार कहता है, अना रब्बुकुम अल आला, आई एम योर लॉर्ड, लिसन टू मी, ओबे मी, फॉलो मी, गो बिहाइंड मी, जो मैं कहता हूँ वो करो, ये है मेरी मर्जी, मेरा कल, मेरा जिस्म, मेरी मर्जियाँ, यानी मर्जियाँ करने कराने वाले खुद को खुदा बनाते हैं। और या माँ होने के नाते आपको कहूँगी कि आप अपने बच्चों की मर्जी को दबाइए ना कि बढ़ाइए, वरना कल तो आगे जाकर न जाने क्या कुछ होने वाला है। आगे रुकूफ 3:45-60, हर शय में अल्लाह की हिकमत छुपी हुई है। अलम तर इला रब्बी का कैफ मुद्दज़्ज़िल, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साय को किस तरह फैला दिया है, अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता, फिर हमने आफ्ताब को इस पर दलील बनाया, फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को राहत बनाई और दिन को खड़े होने का वक्त, और वही है जो बरानी रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। नोट कीजिए आयत 48, बारिश का पानी पाक होता है, पी भी सकते हैं, बल्कि इसमें शिफा है, तो थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी समेट के रख लिया करें अगर कभी इधर बारिश हो गई तो, ताकि इसके ज़रिए से मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दें, और इसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत से चौपाएँ और इंसानों को पिलाते हैं, और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के माना ही नहीं। अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस आप कुफार का कहना ना माने, और जाहिद हम भी ही जिहादन कबीरा, कुरान के ज़रिए इनसे पूरी ताकत से बड़ा जिहाद करें, और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये है मीठा और मज़ेदार और ये है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब बर मजबूत ओट कर दी, वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिला शुबा आपका परवरदिगार हर चीज़ पे कादिर है। अभी साहिद को सुनकर कल से आना ना छोड़ दीजिएगा, कुरान में भी ससुराल आ गए, उनसे तो जान छुड़ा कर इधर आए थे, ऐसा नहीं है, ये अल्लाह को छोड़ कर इनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफ़ा दे सके ना नुकसान पहुंचा सके, और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला। हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है, कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और इसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है, यानी दूसरों को गुनाह बताने की ज़रूरत नहीं, बंदे के गुनाहों को अल्लाह जानता है, वही है जिसने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा कर दिया है, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें, इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं, रहमान क्या है, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है, और इस तबलीग ने इनकी नफरत में मजीद इजाफा कर दिया। अल्लाह हुक्म, मक्का वाले लफ्ज़ रहमान से बहुत चिढ़ते थे, उसी का तذکرہ है। तो आयत 52 का लफ्ज़ जिहादन कबीरा आपके मेरे लिए इस बारे का थीम, जिहाद बिल कुरान क्या होता है, आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को हिदायत के लिए भेजा, हमने इसको सिर्फ बरकत के लिए रख लिया, तो लिहाजा कुरान को हिदायत के लिए पढ़ना जिहाद बिल कुरान है, कुरान के अहकामात को खोल कर बयान करना जिहाद बिल कुरान है, कुरान पाक की तालीम को आम करना, इसकी आयात से नसीहत लेना और इसकी तालीम के इंतजामात करना और इसमें मुआवनत करना, ये सब जिहाद बिल कुरान है। तो आप इस वक्त फिर क्या कर रहे हैं, ये सब इख्तमाम करके जिहाद बिल कुरान, तो मुजाहिद हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तलवार नहीं उठाया, तीर नहीं उठवाया और अल्लाह ने आपको मुजाहिदा बना दिया। और बात यह है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हो तारिके कुरान होकर, तो वो किताब जिसको अल्लाह ने सूरत बकरा में हमें बता दिया था, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, आज आप में उसके साथ कैसा ताल्लुक महसूस करते हैं? कुरान को पढ़े बगैर उससे मोहब्बत भी नहीं होती। और आज कुरान की ये फरियाद माहिरुल कादरी साहब की एक बड़ी मारूफ पोइम है, उसकी मुंह बोलती तस्वीर है। क्या कहते हैं कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के बिलाया जाता हूँ, जुस्दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती नहीं, कहने को एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। बात सच है कि नहीं? आपका मेरा इस कुरान के साथ जिहाद क्या होगा? पहले खुद को सिखाएं, फिर दूसरों को सिखाएं, इस किताब को आम करें। सेम इसी नाम पे लेक्चर है, पांच महाज हैं जिन पे आपको जाकर जिहाद करना पड़ता है। ये कुरान जहालत के खिलाफ जिहाद करवाता है, फिरका वारियत के खिलाफ जिहाद कराता है, हुब्बे दुनिया के पीछे जिहाद कराता है, तशी अल फाहिशा के नतीजे में इस किताब को आम करें। यानी जितना इस कुरान को आम करते जाएंगे, माशरे के अंधेरे दूर होते जाएंगे, और अल्लाह में इसमें खपा दे, कुरान की खादिमात बन जाइए। फिर आगे देखिए, ससुराली रिश्तों का तस्करा था, तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से इसका तस्करा यहाँ क्यों किया? खट्टे मीठे रिश्ते, पी के ट्रिप जो था 2023, उसमें एक टॉपिक आया था खट्टे मीठे रिश्ते, इसी आयत पे था। हकीकत यह कि अल्लाह ने ससुराली रिश्तों का ताना बाना इस तरह बुन रखा है कि इसी से इंसानियत बाहम मरबूत होती है। ज़ाहिर बात है कि आपकी वो सास है, लेकिन आपके बच्चों की दादी है, आपके शोहर की माँ है, बहुत प्यार है उनको आपसे, है कि नहीं? छोड़ दीजिए, आपके बच्चों से तो प्यार है। तो रिश्तों को काट कर हम अपने बच्चों को बहुत सारी दुआओं से महरूम कर देते हैं। फिर आप देखिए कि सिला रहमी और रहम 54 आयत से दिखता है हमें। आपने मैंने क्या करना है? अल्लाह के निज़ाम पे गौर करना है, कुरान के ज़रिए गलत नज़रियात और अकायद को मिटाना है, अल्लाह की हिकमतों को समझना है और रिश्तों को रहमत समझना है। सिर्फ अल्लाह ताला को अपने नफ़े और नुकसान का मालिक जानना है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल और इसकी पाकीज़गी बयान करनी है और जिहाद कबीर करना है। अब आगे बड़ा खूबसूरत लेसन जो सूरत के एंड तक चलेगा, इबादुर रहमान के औसाफ, आयत 61 से 77। तबारक अल्लज़ी जअला फिस्समाई बुरूजा, बबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाया और इसमें आफ्ताब बनाया और मुनव्वर माहताब भी, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। इस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा हो, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर मसलहत के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं, अल्लाह हमारी रातें ऐसी कर दे, और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अज़ाब परे ही रखना, यानी इसको हमसे दूर कर दे क्योंकि इसका अज़ाब तो चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है, और जो खर्च करते वक्त भी इसराफ़ करते हैं, ना बखीली बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल रास्ते पर खर्च करते हैं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो वो बजुस हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, इसे क़्यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा, और वो जिल्लत और ख्वारी के साथ हमेशा हमेशा इसमें रहेगा, सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। दुआ करिए अल्लाह ताला हमारे साथ ये मामला फरमा दें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रजू करता है। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते और जब किसी लफ्ज़ चीज़ पर इनका गुजर होता है तो शराफत से गुजर जाते हैं, वहाँ इंजॉय करने के नाम पर बैठ नहीं जाते। और जब इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो अंधे बहरे होकर इन पर से नहीं गुजरते, और ये दुआ करते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता युनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन कहिएगा। ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें हमारी बीवियों और शोहरों से, औलाद से और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ये आँखों की ठंडक कैसे बनते हैं? भाग भाग के नेकियाँ करें और इनकी नेकियों को देखकर खुशी से मरे आंसू निकल आए, और आंसू के निकलते ही आंख ठंडी हो जाएगी। आप देखिए, पैसा कमाने वाला बाप बेटे को दुकान पे जाता देखकर खुश होता है, सूटेड बूटेड सारी ज़िंदगी ऑफिस की जॉब करने वाला अपने बेटे को खूब पढ़ लिख कर किसी बहुत अच्छे ऑफिस में जॉब करता देखकर खुश होता है। बेटी को माँ खाना पकाता अपने ससुराल में खुश खुश रहता देखकर खुश होती है ना। माँ बाप की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जो माँ बाप कुरान से जुड़ जाते हैं ना, उनको अपने बच्चों से एक ही गिला रहता है हमेशा, कभी कुरान भी पकड़ लिया करो। ऐसे तो नहीं प्यार से कहते जैसे मैंने कहा? कैसे कहते हैं वैसे? ताने डांट गुस्सा, क्योंकि कुरान पकड़ जो लिया है। देखिए ना, क्या आपको यहाँ बैठकर याद नहीं आते अपने बच्चे? बेटियाँ याद नहीं आती? मज़े का खाना खाएं, गुजरता गले से प्यारों के बगैर। एक लुकमा नहीं तोड़ सकता बंदा उसके बगैर जिससे मोहब्बत हो, और फिर खाना भी वो जो मज़े का हो और उसका पसंद का हो। ये कुरान का दस्तरखान, रब्बानी दस्तरखान, अकेले ना खाया करें, ये उनको भी खिलाएं जिनके साथ वो गुजरता है। और ये ना दिन ब दिन याद तो दूरी हो जाएगी। वो कहेंगे अम्मी आप हर एक ही काम करती हैं। अच्छा बेगम आप आ गई घर, किसी ने नहीं आपको रात रखा? अच्छा जी चलिए आइए, बिस्मिल्लाह दरवाजे खुले। याद तो दूरी हो जाती है, कुरान से कुर्बत घर वालों से आपको दूर कर देती है, पक्की बात है। और ना समझियों से ऐसा हो जाता है, हिकमत की कमी के बगैर होता है। और दूसरी तरफ क्या है, वो भी इसी डोरी से खिंचे आते हैं जिस डोरी से आप बंधी हैं। मैं एक मिसाल दे दूँ, खैर अल्लाह ना करे कभी आप रमज़ान में शॉपिंग में जाएं और वो भी मियाँ साहब को मोटा घुपला मुपला बच्चा पकड़ाया हुआ है, और वो बेगम साहिबा के पीछे फिर रहे हैं, बेगम ये ले रही वो ले, वो कहते हैं बेगम बस घर चलो, ख़त्म थक गए। अच्छा आप कहती ठीक, फिर वो थोड़ा सा गुस्सा करके चलते हैं, फिर चलते जाते हैं, फिर वो कहते हैं बस अब मैं जा रहा हूँ, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूँगा। इतने में आपको दूर को खूबसूरत सा जोड़ा लटका हुआ दिखा, राली टपक गई, भूल ही गई कि मियाँ साहब ने धमकी दे चुके हैं आखिरी दफ़ा। आप वो कपड़े देखने में खो गई। जब थोड़ा वक्त गुजरा आपको एकदम, एक तो बिल की या पैसे देने का वक्त आया तो मियाँ साहब की ज़रूरत थी, हाय मियाँ साहब तो वहाँ खड़े होंगे पीछे, लेकिन आप मुड़ के देखते हैं तो वो आपके साथ बेचारे मस्कीन अल्लाह का बंदा। आके थी ज़रा बिल पे कर देना, कहते ये लास्ट बिल होगा ना। अब हुआ क्या, मियाँ साहब को पता चल गया कि बेगम नहीं टलेंगी, इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें दुनिया के बाजार में देख ली हैं, ये लेके छोड़ेंगी। बिल्कुल इसी तरह बी डिटरमिन, आप जितने कन्विक्शन के साथ मोहब्बत के साथ इस किताब को थामेंगे ना, एक दिन आपके मियाँ आपके बच्चे भी उन्हीं डोरियों में बंधे हुए आगे आएंगे। आप कदम कदम आगे बढ़ें, वो पीछे से। अब देखिए ना, आप 2 फुट की रस्सी बांध दें किसी के और अपने बीच में, तो जब आप एक कदम आगे जाएंगी तो कभी खिंच के आना ही पड़ेगा ना, आप अल्लाह के और करीब आए। अच्छा हम क्या करते हैं, इनकी नाराज़गी के डर से अल्लाह से और दूर हो जाते हैं, फिर तो हम भी गए और वो भी गए। तो बहरहाल अल्लाह हमें अपने बीवी बच्चे और शोहरों के साथ जन्नतों में ले जाए। क्या वो जन्नत अच्छी लगेगी जहाँ शोहर ना हो या एक बच्चा भी ना गया? अगर सारे गए एक नहीं गया, दिल लगेगा? तो आज दुनिया में कोशिश कर, अपने मियाँ से कही मैंने आपके बगैर जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर इन सारी बातों में कोई ऊंच नीच हो जाए तो यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदो बाला खाने दिए जाएंगे, जहाँ इन्हें दुआ सलाम पहुँचाया जाएगा और इसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ इल्तजा पुकारना ना होता तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक यानी बिल्कुल भी परवाह न करता। तुम तो झुठला चुके, अब अन करीब इसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। इतना प्यार करता है आपका रब आपसे। पहली बात देखिए, इबाद का लफ्ज़ आया है, अब्द कहते हैं एक को, इबाद जमा है। अरबी में अब्द की दो जमे हैं, एक अब्द के बाद इबाद और एक अबीद। यहाँ इबाद क्यों आया है इसको समझना, इसलिए कि अबीद मजबूरी के साथ भी किसी को गुलाम बनाए हुए को कहते हैं, जैसे तौम व करहन, सूरज चांद सितारे अल्लाह के हुक्म के बंधे हुए हैं। लेकिन इबाद उस गुलाम को कहते हैं जो अपनी मर्जी से गुलाम बने। दूसरी बात आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा मंजर नहीं दे दिया अपनी मोहब्बत का रहमान लफ्ज़ से जोड़कर, ये तो नहीं कहा कि इबादुल कहार इबादुल जब्बार। उसके रहम को महसूस कीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 6989, 61 आयत के बारे में अबू मूसा अशरी से रिवायत है, बेशक अल्लाह ताला इज्जत और बुजुर्गी वाला अपना हाथ फैलाता है रात को ताकि दिन का गुनाहगार तौबा करे, और हाथ फैलाता है दिन को ताकि रात का गुनाहगार तौबा करे, यहाँ तक कि आफताब निकले पच्छम से। इतना इंतज़ार करता है आपका रब कि आप तौबा करके पलट आएं। फिर आप देखिए कि आयत 73 की रोशनी में ज़रा सा तकाबुल कर लेते हैं मोमिनीन और मुनाफिकीन का कुरान से ताल्लुक़। मोमिनीन का ताल्लुक़ क्या होता है? कुरान की हर बात से गहरा असर कबूल करते हैं, और जब ये मोमिन इबादुर्रहमान बन जाते हैं तो वो नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं। इबादुर्रहमान का नसीहत से शगफ़ होता है, कुरान की तालीम और नसीहत इनके लिए आबे हयात से बढ़कर होती है। यानी आपको ये ऑक्सीजन मास्क नहीं लगता, आप कुरान के बगैर जी सकते हैं? बस ये ताल्लुक़ दिन ब दिन बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। मुनाफिकीन कुरान पढ़ने वाले को इस तरह देखते हैं जैसे अंधे हों, कुरान को इस तरह सुनते हैं जैसे बहरे हों। फिर आप देखिए कि आयत 74 से पता चलता है कि इबादुर्रहमान को रिश्तों की फिक्र और चाहत होती है। रब्बना हब लना वाली दुआ मांगा करें, फिर से जान बना लें। 63 से एंड तक क्या क्या सिफात हैं, और लिख लीजिए कि सहाबा कराम में ये सारी खूबियाँ मौजूद थीं। ज़मीन पर आजी से चलते थे, जाहिलों को नरमी से सलाम का जवाब दे देते थे, इनकी रातें रकू और सुजूद में गुजरती थी, मगफरत की दुआएं करते थे, मियाना रवि से खर्च करते थे, शिर्क और कुफर नहीं करते थे, जिना से बचते थे, तौबा करने वाले थे और झूठी गवाही नहीं देते थे, बेहुदा बातों और महफिलों से परहेज़ करते थे, अल्लाह के अहकाम को गौर से सुनते और अपने अजवाज और औलाद के लिए दुआएं करते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदुवन, आपने मैंने एक तो ये सारे ही काम करने हैं, फिर रात और दिन से नसीहत लेना है, रहमान के बंदे बनने हैं, बेइल्म लोगों से बहस नहीं करनी, और ऐसी जगह जहाँ अल्लाह के हुक्म टूटते हैं वहाँ बेइज्जती के तौर पर बैठ नहीं जाना बल्कि मर्रू खिरामा। आपको सूट नहीं करता कि आप ऐसी महफिलों में बैठे जा अल्लाह की हदें टूट रही हों। फिर रातों में अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अजाब से पनाह मांगनी है और माल को मोतदिल तरीके से खर्च करना है, और अल्लाह ताला आपसे मुझसे ये खिदमत ले ले।